السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم عشرہ مبشرہ کے بعد جن صحابی رسول کے بارے میں جانیں گے، وہ نام میں تو ہر جگہ مقبول ہیں، ہر کوئی ان کا نام جانتا ہے اور ان کو مؤذن رسول کے نام کے ساتھ یاد کرتا ہے. بلال بن رباح رضی اللہ عنہ. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ہر مسلمان کو ان کا علم ہے، لیکن کم ہی لوگ ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں. نام ان کا بلال، کنیت ابو عبداللہ، حالانکہ ان کے کوئی بھی اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں ایسے بھی کنیت رکھ لیتے تھے، ابو عبداللہ. اور والد کا نام ربا، را با الف اور ہا، اور والدہ کا نام حمامہ. یہ حبشی نژاد غلام تھے، لیکن مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے. ان کا آقا امیہ بنو جمح سے تھا. ان کی والدہ جو تھی وہ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ آئی تھی، اور ان کو وہاں پہ پکڑا گیا تھا اور لونڈی بنایا گیا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ حبشہ کی کوئی شہزادی تھی، لیکن اس کے بعد ان کی شادی رباح کے ساتھ ہوئی، جو بھی غلام تھے. اور ان غلام اور لونڈی کے ہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. ظاہر ہے انہوں نے مکہ میں ہی آنکھ کھولی، تو عربی ان کی مادری زبان تھی. اور ان کے حلیے کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی سیافام، انتہائی یعنی ان کا رنگ کالا تھا. ان کی ناک موٹی تھی اور ان کے ہونٹ بھی موٹے تھے، اور آنکھوں کا رنگ لائٹ براؤن، جیسے وہ کہتے ہیں، یعنی ہلکی رنگ کی آنکھیں تھیں، اور بہت سارے بال تھے سر پر. جب بڑھاپا آیا تھا تو اس وقت چند سفید بال ان کی داڑھی میں ہوتے تھے، داڑھی بہت گنی نہیں تھی، دبلے پتلے تھے اور قد لمبا تھا. عام الفیل سے 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر جہاں حسب نسب کا اور قبیلے کے اوپر بہت فخر ہوتا تھا کہ میں کوئی اعلیٰ خاندان سے ہوں، اعلیٰ قبیلے سے ہوں، وہاں پر ایک غلام کی حیثیت کچھ نہیں تھی. اس معاشرے کے اندر سٹیٹس بہت دیکھا جاتا تھا. تو ایک غلام جو تھا نا، وہ کوئی بھی یعنی کسی قسم کی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ بہت ہی کمزور طبقے میں سمجھے جاتے تھے غلام. ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم روا رکھا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ نہ تو کوئی ایسی پولیس کا اور نہ کوئی ایسی چیز کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا. اس معاشرے میں قبائل ہی اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے، ان کو پناہ میں اپنی رکھتے تھے. ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم اور زیادتی ہوتا تو قبیلہ ہی انتقام لیتا تھا، قبیلہ ہی فیصلے کرتا تھا، تو سب کچھ قبیلہ ہوتا تھا. اب آپ خود سوچئے کہ ایک غلام جس کا کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سیاہ فام حبشی غلام کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تو بہت سارے گوری چمڑی والوں کو نہیں ملا. اللہ اکبر. جب انہوں نے آنکھ کھولی تو سوچیں کہ ان کے گرد कैसा मुआशरा होगा। बाज़ जगह पे आता है कि अपनी वालदा को बहुत दफ़ा पिटते हुए भी देखते थे कि मार पिटाई हो रही है। ग़ुलाम क्या होता है? कुछ भी नहीं। और ये स्याह फाम ग़ुलाम आज भी आप देखें, स्याह फाम लोगों को यानी दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है फिर भी उनको वो राइट्स नहीं मिलते जैसे एक गोरी रंग वाले को मिलते। ब्लैक लाइव्स मैटर और ये सब आप इसीलिए सुनते हैं ना, क्योंकि काला रंग होना आज तक भी जब माशरों के अंदर ये बात हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, रेसिज्म नहीं होना चाहिए, तब भी अगर रंग के ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है तो अंदाज़ा कीजिए कि उस ज़माने में क्या होती होगी। तो इनके वालिद तो अरब ही थे मगर वो भी स्याह थे, वो भी ग़ुलाम थे, और वालदा भी वो तो हबशा से थी और वो भी एक लौंडी हैं। तो यानी ग़ुलामों की औलाद ही हुए, ऐसे नहीं था कि हज़रत ज़ैद की तरह पहले आज़ाद थे और उसके बाद ग़ुलाम बनाए गए। और लोगों ने इनको अपने मक्का में ही पलते बढ़ते देखा था। कहा जाता है कि इनको बाज़ दफ़ा लोग हकारत से इबन सौदा कहते थे कि काली के बेटे। बाद में एक दफ़ा देखिए, अब मकाम और मर्तबे की बात हो तो सईद बिन मुसैब ताबई हैं, वो एक लड़के को गमगीन देखते हैं तो फरमाते हैं गम ना कर इस बात पे कि तुम काले हो, दुनिया में इस ज़मीन पे तीन बेहतरीन लोग जो चले वो काले थे, बिलाल, महजा और लुकमान। तो सुभान अल्लाह के रंगत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आगे आज इनकी जब हालात देखेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ें हरगिज़ भी बिल्कुल मैटर नहीं करती कि किसी इंसान का रंग क्या है या उसका माशरे में स्टेटस क्या है। इनके बारे में आता है कि फिर जब ये यानी आप जवानी की उम्र को पहुँचे और नबी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ नबी, तो इनके कानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें पहुंचने लगी। वो लोग मक्का में, जाहिर है ये बहुत एक हॉट टॉपिक था, और वैसे भी सैयदना बिलाल अपने सरदारों और उनके मेहमानों की बातें बहुत तवज्जो से सुनते थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उनके बारे में ये भी आता है कि बहुत बासलाहियत, बहुत इंटेलिजेंट, गो के काले रंग के हैं, मोटी नाक है, मोटे होंठ हैं, लेकिन आप देखें अल्लाह ताला ने बनाया है, और अल्लाह ताला किसको क्या सलाहियत दे दे कि ज़हीन इतने ज़्यादा हैं कि ग़ुलामों में बड़े फेवरेट थे ये, यानी अपने आका के बड़े फेवरेट थे, क्योंकि एक बासलाहियत खादिम आज भी, नौकर किसी का भी एम्प्लॉई अगर कोई होता है और वो बहुत बासलाहियत हो, बड़ा मेहनती हो, बड़ा ज़हीन हो, तो हर एक ऑफिसर या बॉस के लिए तो वो बड़ा फेवरेट होता है। तो इस तरह ये भी थे, अपने सरदारों की जो जो मेहमान आते थे उनकी गुफ्तगु बड़े गौर से सुनते थे। उमैया बिन खलफ, इनका जो आका था वो बड़े बड़े सरदारों में से था, वो सुनते थे कि उमैया कभी अपने दोस्तों के साथ और कभी अपने कबीले के लोगों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ा गैज़ो गज़ब और बड़ा ऐसी बुरी बुरी बातें करता है। तो इनके कानों में ये बातें पड़ती थी कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या पैगाम है। और इनको हैरानी होती थी कि ये कैसी बातें करते हैं। बाज सरदार बाज से कहते कि मोहम्मद तो कभी भी झूठ नहीं बोलता, मोहम्मद तो मजनून नहीं लगता, मोहम्मद तो जादूगर नहीं लगता। अब उनको लेकिन ये नहीं समझ आती थी कि अब इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाएं। और सैयदना बिलाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आपकी सच्चाई, आपकी दयानत, इस बारे में बातें भी सुन रखी थी। एक दिन बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیا اور اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا۔ امیہ بن خلف جو ان کا آقا تھا، اس نے جب کسی کے سامنے بری بری باتیں کی تو اس نے کہا آگے سے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، جا کے اپنے غلام کی تو خبر لو۔ اس کو بھی دیکھا گیا کہ وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ۔ تو جب امیہ کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ میرا غلام یہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ تو آگ بگولا ہو گیا، اس لیے کہ اس کے لیے تو یہ ایسے تھا کہ جیسے اس کو کسی نے تھپڑ مار دیا، اس کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی، کیونکہ غلام تو پراپرٹی سمجھے جاتے تھے نا، تو یہ میری پراپرٹی ہو کر یہ کیسے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو امیہ نے دل میں سوچا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آج کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اس غلام کے اسلام کا سورج بھی غروب ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ امیہ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ان کو، اور جب اس نے آ کے پوچھا حضرت بلال سے کہ ایسا کیا ہے، تو انہوں نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں اسلام لے آیا۔ اور اس وقت اب یہ وہ موقع تھا جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کُلم کُلا اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ امیہ جو کہ اب باہر جاتا ہے تو اس قدر زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، بڑا دشمن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے دشمن تھے، جن میں ابو جہل، ابو لہب شامل ہیں، تو ان میں ایک امیہ بھی شامل ہے۔ اتنا زیادہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا کہ لوگوں کو بھی ابھارتا تھا کہ آپ کے خلاف جا کے بات کرے۔ اس سے کیسے برداشت ہونا تھا کہ اس کا اپنا غلام مسلمان ہو گیا، اندازہ کیجئے، وہ تو پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو ہی کیسے سکتا ہے، تو یہ سچ ہے، تو صابی ہو گیا۔ صابی تو وہ اس کو کہتے ہیں نا، اپنا دین بدل لی۔ تو حضرت بلال نے یہ نہیں کیا کہ میں جھوٹ بولوں یا میں کوئی کچھ بات چھپا لوں، حالانکہ اس کے باوجود کہ ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، یعنی آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ غلام کی کیا حیثیت ہے، اور وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرے کوئی اس کا آقا، تو وہ کہیں جا کے فریاد نہیں کر سکتا۔ ایسے میں اندازہ کریں کہ وہ کدھر جائیں گے اگر وہ سچ بول دیتے، لیکن اس بات کی انہوں نے پرواہ نہیں کی اور انہوں نے سچ بیان کر دیا۔ امیہ نے شروع شروع میں تو بڑا دھمکایا اور کہ میں ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، یہ کر دوں گا، لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر اس کا ٹارچر شروع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے ایسے اس نے طریقے کیے ٹارچر کرنے کے ان کو، کیونکہ اس کو پرواہ تھوڑی تھی، اگر یہ مر بھی جاتے تو اس کے لیے تو صرف یہ تھا ایک مالی نقصان ہو جانا تھا، ادروائز انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، کہ کوئی تھوڑا بھی اس کے دل کے اندر کوئی رحم ہوتا یا کچھ، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بھائی میرے مجھے مالی نقصان پہنچے۔ وہ کہتا تھا کہ بھائی زندہ بھی رہیں، کیونکہ ظاہر ہے جیسے آپ کی گاڑی ہوتی ہے یا آپ کی کوئی اور چیز ہے، اب آپ وہ آپ کی ایک پراپرٹی ہے اور پلس آپ کے پیسہ اس میں لگا ہوا ہے، تو غلام کام کے ہوتے تھے۔ اب امیہ کیا کرتا تھا، ان کے ایک پٹا سا گلے کے اندر ڈال دیتا تھا اور پھر ان کو باندھ دیتا اور دھوپ میں لٹا دیتا۔ آپ آج بھی جا کے دیکھیں سعودی عرب وغیرہ، کبھی آپ حج پہ، حج گرمیوں کے حج میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا کبھی عمرے وغیرہ پہ دیکھیں، آپ وہاں کی دھوپ کیسی ہوتی اور وہاں کی گرمی کیسی ہوتی، یعنی ناقابل برداشت۔ صرف آپ مسجد سے ہوٹل تک بھی، قریب ترین ہوٹل تک بھی جائیں تو آپ کا سانس گھٹنے لگتا ہے اور پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ ایون یعنی جس کو اچھا موسم وہاں پہ کہتے ہیں، اس میں بھی آپ چلے جائیں تو آپ دوپہر کے وقت کبھی طواف کرنا ہو تو آپ سے دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اور کہاں یہ کہ وہ تپتی دوپہروں کے اندر گرمی میں उनको लिटा देता था रेत के ऊपर और ऊपर लोहे की चादरें रख देता था। बास रिवायात में आता है कि ज़िरा पहना देता था, क्योंकि वो लोहे की होती थी ना, और फिर लिटा देता था। अब लोहा जब तपेगा तो ऐसे ही समझेंगे जैसे स्त्री किसी के ऊपर रखती है। और कहता था कि कह लात और उज्जा, लात और उज्जा, ये कह दे बस। अब वो ये भी नहीं कहते थे, वो ये नहीं कहता था कि तुम इनकार कर दो या तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बुरा भला कहो, नहीं, वो कहता था कि सिर्फ लात और उज्जा कह दे बस। यानी उसने इनके लिए बड़ा आसान कर दिया था, लेकिन इनकी ज़ुबान से सिर्फ एक ही बात निकलती थी, अहदुन अहद, अहदुन अहद, अहदुन अहद। बाद में जाके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ऐसे ग़ुलाम भी हों तो क्या बात है। कि बाद में जाके हज़रत उमर के खिलाफत के ज़माने के अंदर उन्होंने एक दफ़ा इनसे पूछा था कि आप उमैया के जब मज़ालिम होते थे तो इसके जवाब में आहदुन आहद क्यों कहते थे। तो फरमाते हैं कि अगर मैं अल्लाह ताला के बारे में इसके सिवा कुछ और जानता होता तो वो यकीनन वो कह देता। यानी उनको तो बस एक ही बात पता थी कि कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है बस, अकेला। तो आहदुन आहद इनके मुँह से निकलता था। अब देख लेना कि एक ग़ुलाम है, अब आका उसकी ज़िद नहीं तोड़ पा रहा कि ये क्यों, ये बस इससे हट जाए। अब उसको ये नहीं था कि ये छोड़े इसको या इस दीन को छोड़े या क्या करे, ये तो बाद की बात है। वो कहता था कि किसी तरह ये बस कहना बंद कर दे। जिस तरह होता है ना कि एक बंदा ज़िद में आ जाता है कि मैंने बस इससे ये कहलवाना है कि बस कह दे लात और उज़ा, बस ये सिर्फ कह दे तो मैं छोड़ दूँगा। अब उसकी भी एक अना पे मसला आ गया, और ये भी कहते थे कि मैं नहीं कह के दूंगा। अल्लाहु अकबर। हत्ता के उसने ताइफ के जो औबाश थे उनके पास ले जाता था और इनको बांध के कहता था कि इसको ले जाओ, इसके साथ जो करना है करो, लेकिन इसको तोड़ दो कि ये कहना बंद कर दे। चाहे इसको मारो, चाहे पीटो, चाहे गालियां दो, चाहे बुरा भला करो, चाहे किसी तरह से बेइज्जत जलील करो, कुछ भी करो, लेकिन वो बाज ना आए। फिर भी अहदुन अहद, अहदुन अहद, एक चीज़ बस ज़ुबान पे। फिर क्या करता था कि वो लेकर आता था और अल्लाहु अकबर मक्का में लड़कों के हवाले कर देता था बांध के कि ये लो और इनको लेके गलियों में घसीटो। गलियों में वो घसीटते थे ऐसे कि इनके खून के फवारे निकलते थे और जो धारियाँ होती थीं वो गलियों के अंदर खून की धारियाँ इनकी बहती जाती थी। लेकिन वही वाली बात है, इब्ने मसूद फरमाते हैं जिन लोगों ने अव्वल अव्वल इस्लाम कबूल किया वो 7 लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, अम्मार, उनकी वालिदा सुमैया, सुहेब, बिलाल और मिक़दाद। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अबू तालिब ने अमान दे दी और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनू तईम ने, मगर जो बाकी थे उनको लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया जाता था और धूप में इनको लिटाया जाता था और इनके ऊपर ऐसे मजालिम ढाए जाते थे। लेकिन हर एक ने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ कहा इन मजालिम से छुटकारा पाने के लिए, सिवाय बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यानी वो इतना सिर्फ कह देते हैं, और ये इस्लाम में अलाउड है कि अगर इतना किसी के ऊपर जबर किया जा रहा है, जैसे हज़रत अम्मार ने कह दिया था जब हम उनकी स्टोरी देखेंगे, तो ये अलाउड है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने लिए दिल के अंदर ऐसा ना हो लेकिन ज़ुबान से कह सकते हैं सिर्फ ये इन मजालिम से बचने के लिए। लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है कि वो इस कलमे को किसी तरह भी छोड़ने को तैयार नहीं थे कि ज़ुबान से ही कहना छोड़ दें। कहते हैं इब्ने मसूद के बिलाल ने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी जान को रोंद डाला अल्लाह के रास्ते में, अपनी जान को रोंद दिया, अपनी जान को यानी बिल्कुल जलील हकीर कर दिया अल्लाह के रास्ते में। उनको लोगों की परवाह नहीं थी, ना उनको अपनी जान की कोई परवाह थी। ये औबाश नौजवान उनको एक वादी से दूसरी में घसीटते हुए ले जाते थे। आप अंदाज़ा कीजिए, गाड़ी के पीछे ना एक टायर भी लगा दिया जाए ना, और गाड़ी चला दी जाए, तो आप सोचें कि वो टायर घिसटता हुआ उसकी क्या हालत हो जाएगी अगर गलियों में इस तरह घिसटता रहे। इसके बावजूद वो अहादुन अहाद अहादुन अहाद कहते रहते थे। अल्लाह अकबर। इसी तरह हज़रत अम्मार फरमाते हैं कि हम सब ने वो कहा जो वो हमें चाहते थे कि हम कहें, सिवाय बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। अल्लाह अकबर। और जब सोचें कि वो लोहा तपता होगा जो जिस ज़िरा को पहना के इनको लिटाया जाता होगा, तो फिर क्या हाल होता होगा। फिर भी उमैया को चैन नहीं आया, तो उसने फिर एक और हरबा अपनाया कि तपती दोपहर में जिस वक़्त वो धूप बिल्कुल उरूज पे होती, उस वक़्त ऐसे पत्थर वहाँ पे तपते थे ना कि अगर आप उनके ऊपर खाना बनाना चाहें ना तो खाना भी बना सकते, इतने गर्म होते हैं वो, तो ऐसे होते हैं जैसे कोयला बन गए। अब अंडा फेंकेंगे ना उसके ऊपर बन जाएगा, पक जाएगा वो। इतने गर्म पत्थरों को नीचे बिछा देता था और उसके ऊपर इनको बांध के लिटा देता था, और फिर इनके सीने के ऊपर भारी पत्थर रख देता, और फिर कहता अब कहो लात और उज्जा, और वो कहते अहद उन अहद। फिर एक और भारी चट्टान रख देता, फिर कहता अब कहो लात और उज्जा, फिर वो नहीं मानते अहद अहद कहते, तो फिर और पत्थर रख देता। अल्लाह अकबर। मगर इनके सब्र की इंतहा देखें कि इन्होंने गिव अप नहीं किया। ये एक दिन नहीं हो रहा। देखें, याद रखिए एक बात कि ये जो मुहाजरीन सहाबा कराम है ना, इनका टॉर्चर एक दिन नहीं होता था, इनके ऊपर टॉर्चर होता ही जाता था, होता जाता था, और ये उसको बर्दाश्त करते थे। ये एक दिन की बात नहीं थी। इन सारे जितने ये मुहाजिर सहाबा कराम हैं, इनको जो भी तकलीफ़ें पहुंचाई गई, चाहे इनको घर छोड़ना पड़ा, घर वाले इनके इनसे दूर हो गए, इनको टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ा, वो एक दो दिन नहीं रहता था, कंटिन्यूसली चलता था। हत्ता के कहा जाता है कि एक दिन अब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से गुजरे, उन्होंने उमैया से कहा कि इसको मेरे हाथ भेज दो। उमैया भी राज़ी नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर वो राज़ी हो गया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस इनके इवज़ उसको मुंह मांगी, कीमत दी, कि जब उन्होंने फरमाया कि कितने में इनको मेरे हाथ बेचोगे। आप देखें कि उमैया के लिए ये तो यानी सिर्फ एक बेकार गुलाम रह गया था, क्योंकि अब उसके काम का नहीं रहा ये गुलाम, हम उसके काम का नहीं रहा, इसलिए कि वो क्या करेगा ऐसे गुलाम को कि जो उसकी बात ही ना माने। तो जब उन्होंने ये तकलीफ़ें देखी, आपको पता है ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नेकियां कहाँ तक जाती हैं, कहाँ तक जाती हैं, कि उनके हाथों पर कई लोग इस्लाम लेकर आए जो अशरा मुबशरा में से बने, और फिर यहाँ पर भी जब गुजरते हैं तो कहते हैं उमैया से, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि वो कहता मेरा रब अल्लाह है। फिर कहते हैं उमैया को कि इसकी कीमत जितनी चाहे ले लो, लेकिन इसको आज़ाद कर दो। अब जाहिर है अबू मैया ने क्या कहना था, उसके पास तो और कुछ नहीं था, वो थक चुका था कि भाई अब मैं क्या इनको रख के करूँगा। तो उसने हामी भर ली, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के हाथों बेच दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बिलाल को लेकर जा रहे थे, तो उमैया कहने लगा तुम इसको ले जाओ, लात और उज्जा की कसम, अगर तुम इसे एक दीनार के इवज़ भी खरीदना चाहते तो मैं इसे तुम्हारे हाथ फरोख कर देता। अभी तो उसने ज़्यादा पैसे लिए थे ना, तो कहने लगा अगर एक दीनार के बदले भी तुम इसको ख़रीदना चाहते तो मैंने तो उतने में ही दे देना था, तुम्हारे तुमने खामखा इतने ज़्यादा इसके ऊपर पैसे दिए। एक तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डिग्रेड करने के लिए कि तुम कोई हैसियत नहीं रखते, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें तो एक दीनार में ही मैंने तुम्हें दे देना था। लेकिन आगे से सोचें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम,
اگر تم اسے 100 اوقیہ، اوقیہ تو زیادہ ہوتا ہے، اوقیہ کے عوض بھی بیچتے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہو جاتا. یعنی آپ نے کتنی بڑی ویلیو، دیکھیں آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سن رہے ہیں نا، تو ان کے بتایا کہ تمہاری قدر و قیمت کتنی ہے، کہ امیہ سے کہا کہ اگر تم 100 اوقیہ بھی مانگتے اس کے بدلے میں، میں وہ بھی دینے کو تیار ہو جاتا، یعنی تم نے تو سستے میں بیچ دیا. تو اتنی زیادہ ویلیو ہے ہمارے نزدیک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی اس بات کی تھی جس دن حضرت بلال کو آزاد کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد جب یہ آزاد ہو گئے اور انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو یہ بیمار پڑ گئے تھے مدینہ آ کے. مدینہ میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ایسا موسم تھا جو کہ ہیومڈ تھا، اور جو مکہ کے لوگ تھے ان کو سوٹ نہیں کیا تھا، تو بہت سارے لوگ بیمار پڑے جو بھی ہجرت کر کے آئے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بلال کی عیادت کے لیے گئی اور ابھی حجاب کی آیات نہیں اتری تھی، تو وہ شدید بخار میں مبتلا تھے. میں نے پوچھا بلال کیسے ہو، تو انہوں نے یہ شعر کہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے تھوڑا بہت، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں کی وادی میں رات گزاروں جس کے ارد گرد اذخر، اور اذخر کی ایک گھاس ہوتی ہے نا، وہ وہاں پہ مکہ کے قریب تھی، تو وہاں پہ میں رات گزاروں، اور میں کیوں نہ دیکھوں ایسا دن جس میں وہاں کا پانی ہو، یہ وہاں کے کنویں کا نام لیا کہ مینا کا ایک کنواں، تو وہاں کا پانی ہو، اور میں دیکھوں کہ وہاں پہ وہاں کے جو پہاڑ ہیں ان کو دیکھوں. اور اس طرح کی شاعری کی، یعنی بہت زیادہ یاد کر رہے تھے مکہ کو. یہ کہنا آسان ہے اپنا وطن چھوڑنا، اپنی جگہ جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے، وہاں سے مائگریٹ کرنا آج بھی بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو جہاں کمیونیکیشن کی ایسے انتظام نہیں تھے جیسے آج ہیں، اس زمانے یہ کتنا مشکل ہوگا کہ یہ مائگریٹ کر کے گئے ہیں اور مکہ کو یاد کر رہے ہیں کہ میں وہاں کے پہاڑ اور وہاں کی وادیاں اور وہاں کے پانی پیوں اور وہ ان جگہوں کو دیکھوں، کاش میں وہاں پہ رہ سکوں. کتنا مشکل ہوا ہوگا نا دل لگانا نئی جگہ پہ آ کے، خاص طور پہ جب آپ کا نہ گھر بار ہے وہاں پہ، نہ وہاں پہ آپ کا خاندان ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، ساری سپورٹ سب کچھ وہیں رہ گیا، صرف اللہ کی خاطر چھوڑ دیا. آپ دیکھیں آج ہمیں کوئی گھر بار چھوڑنے کو نہیں کہتا، کوئی جانے دینے کو نہیں کہتا، پھر بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی اللہ کے راستے میں چھوڑنا کتنی مشکل لگتی ہیں ہمیں، کہ نہیں ہر چیز کے ساتھ ہم نے دل لگایا نا، نہیں یہ تو ایسے ہے، اس کا تو یہ ہے، یہ تو مجھے بہت پسند ہے، کیسے چھوڑ دوں، پھر کیسے ہوگا. تو اپنے آپ کو کوئی چیز سے بھی ڈیٹیچ کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جان پہ بن گئی ہے، کچھ بھی اللہ کے راستے میں چھوڑنے کو کہہ دیں. وطن چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہاں ہم جابس کے لیے، بیٹر فیوچر کے لیے، بیٹر لائف سٹائل کے لیے تو دوسری جگہوں پر مائگریٹ کر کے جاتے ہیں، موو ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر مائگریشن چھوڑ دیں، اللہ کی خاطر کسی گناہ کو چھوڑنا وہ کیسا ہے، کتنا آسان لگتا ہے. ہم چمٹے میں ہیں کئی ایسے کاموں کے ساتھ جو ہمیں معلوم ہے کہ یہ گناہ کے ہیں، پھر بھی ہم ان کو جاری رکھتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیں چونکہ پسند ہے تو ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بتاتی ہیں کہ بلال اس طرح فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے، اور دعا کی آپ نے کہ یا اللہ مدینہ کی وبائیں اور اس کے تعاون کو لے جا اور مدینہ سے باہر ابوا میں پھینک دے، اور اے اللہ ہمیں مدینہ کی محبت دے مکہ کی محبت کی طرح یا اس سے بھی زیادہ. اور اسی وجہ سے دیکھیں آج تک لوگوں کے دلوں میں مدینہ کی اتنی محبت ہے کہ حالانکہ حج کا حصہ نہیں، عمرے کا حصہ نہیں، پھر بھی کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا ایسا نہیں ہے جو جائے وہاں پہ اور مدینہ کو چھوڑ دے، مدینہ نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. कितनी ही नातें, कितनी नशीद मदीना सी मोहब्बत के बारे में। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मदीना के अंदर ऐसी मोहब्बत, ऐसी अट्रैक्शन डाल दी। अल्लाहु अकबर। अब जब मदीना पहुँचे तो वहाँ पर हज़रत साद अबू रुवैहा इनके साथ मुआखात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी करा दी थी, और यानी भाईचारा, और दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। जब ये हज़रत उमर के ज़माने में ये जा चुके थे तो हज़रत उमर ने पूछा कि बिलाल तुम्हारा वजीफ़ा कौन वसूल करेगा, तो फरमाया कि मेरा जो भाई अबू रुवैहा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों को जो बरादराना ताल्लुक हमारे दरमियान पैदा कर दी वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब जब मदीना आए तो आपको पता है कि कुछ अरसे बाद ही अब्दुल्ला बिन जैद ने अज़ान देखी थी ख्वाब में, और वो ख्वाब उन्होंने जब आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आपने बता दिया कि हाँ ये सच्चा ख्वाब है। आपने फिर अब्दुल्ला बिन जैद से फरमाया कि बिलाल को लेकर आओ और उसको ये अल्फाज बताओ, और वो ये अल्फाज कहे, क्योंकि उनकी आवाज़ जो थी बहुत बुलंद भी थी और बड़ी दिलकश थी। तो हालांकि अब्दुल्ला बिन जैद चाहते थे कि मैं खुद ये अज़ान दूँ ना, अज़ान के अल्फाज तो उन्होंने ख्वाब में देखे थे ना, लेकिन आप सल्लम ने फरमाया कि नहीं, उनको आप बुलाएं और उनको कहें। तो पहली अज़ान जो इस्लामी तारीख में दी गई वो हज़रत बिलाल ने कही है। आज तक जो भी अज़ान देता है वो उनके बाद ही है। तो सैयदुल मुअज़्ज़िनीन है, मुअज़्ज़िनों के सरदार हज़रत बिलाल। और फिर जितनी देर मदीना में रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तब तक यही अज़ान देते रहे। और जब अज़ान दे देते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते थे कि अस्सला या रसूलल्लाह, नमाज यानी तैयार है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से तशरीफ़ लाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जाते थे तो सफ़र में भी यही अज़ान देते थे। और जैसे कि आपको पता है कि उस वक़्त दो अज़ानें होती थी, एक सुबह की यानी फजर की और एक फजर से थोड़ा पहले होती थी, ताकि वो लोग जो तहज्जुद पढ़ रहे हैं, अब उनको पता चल जाए अगर सहरी करनी है तो सहरी कर लें, और अगर जो लोग सो रहे हैं तो वो उठ जाएं और नमाज के लिए तैयारी कर लें। तो वो एक अज़ान इब्ने मक्तूम, उम्मे मक्तूम देते थे और एक अज़ान हज़रत बिलाल देते थे। वो इब्ने उम्मे मक्तूम चूँकि अंधे थे तो उनसे लोग जब वो लोगों से पूछते थे, लोग उनसे कहते थे सुबह हो गई है, तो फिर वो अज़ान देते थे। रमज़ान में हज़रत बिलाल की अज़ान के बाद खाना पीना जायज़ होता था कि सहरी कर लें, अभी तक आपने रोकनी नहीं है। वो सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया, वो पहली अज़ान इसीलिए होती थी कि इबादत करने वाले जो है ना, अब वो अगर उन्होंने रोज़ा रखना है, अब रोज़े की तैयारी कर लें, सहरी कर लें, कुछ देर आराम कर लें, और जो सोए हुए हैं वो उठ जाएं। तो ये इनकी अज़ान होती थी। तो सफ़र में हों या हज़र में हों, हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ होते थे, साथ साथ और हर गज़वे में साथ रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। तो समझ लें कि जब अज़ान दे दी तो फिर उसके बाद आप सल्लम के पास गए, आपको फरमा दिया कि अब आ जाएं आप नमाज के लिए, फिर आप निकल के आएंगे। तो यानी समझ लें पांच दफ़ा तो दिन के अंदर आप सल्लम के पास जाते ही थे ना। और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदार भी थे, यानी पहरा भी देते थे आपके खैमे के बाहर। ऐसे नहीं था कि किसी ने कहा हुआ है, लेकिन बस एक अंडरस्टूड ही बात हो गई थी, इतने करीबी थे ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान भी उठाते थे, जैसे कोई कहीं नमाज इस्तस्का है या फिर नमाज ईदैन है जिसमें बाहर जाकर नमाज पढ़नी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुतरे के लिए जो खंजर वगैरह होता था वो भी लेके जाते थे। इसी तरह आपके पानी, वज़ू का یا کبھی آپ کے جوتے وہ اٹھاتے تھے، آپ کا خیمہ نصب کرتے تھے۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ مؤذن تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار بھی تھے، اور چندہ وغیرہ بھی جب جمع کرنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے۔ مجاہد بھی تھے، جہاد پہ بھی جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نماز عید کے لیے بھی مدینہ سے باہر نکل کے کھلے میدان میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو ابھی بھی جو لوگ جیسے وہاں پہ گئے ہوں تو آپ نے مسجد غمامہ دیکھی ہوگی، جب بھی میرے ساتھ لوگ جاتے ہیں ہم ضرور جاتے ہیں جب اس طرح ٹور پہ مسجد قبا کے، تو مسجد غمامہ ابھی بھی باہر مسجد نبوی کے، لیکن ابھی تو ساتھ ہی ہو گئی نا، اس وقت تو مدینہ اتنا بڑا نہیں تھا تو وہ شہر سے باہر سمجھ لیں تھی، مدینہ کی بستی سے باہر تھی غمامہ کی مسجد، تو وہ مسجد نہیں تھی اس وقت، وہاں پہ میدان ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ان کا بڑا ہی ایک قریبی گہرا تعلق تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سفر کے اندر تھے تو غالباً شاید خیبر سے واپسی کے سفر تھا، تو سب لوگ بہت تھک گئے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اسی جگہ پڑاؤ کا حکم ہو تو بہتر ہے۔ تو اب رات بھی ہو گئی تھی، آپ نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ نیند تم کو غافل کر دے گی۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے کہ جو اس وقت ہمارے لیے پہرا دے یا ہمارے لیے ہمیں صبح اٹھنے کے لیے ہمیں جگائے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حامی بھر دی کہ میں جگاؤں گا۔ تو اس وقت سب لوگ، سارا لشکر سو گیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے میں انہوں نے نماز شروع کر دی۔ اور دیکھیں آپ، نماز تو شروع کر دی لیکن اندازہ کیجئے کہ نیند کے آگے کوئی انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھی اور کس وقت آنکھ لگ گئی پتہ بھی نہیں چلا ان کو، اور آنکھ تب کھلی جب سورج نکل آیا تھا اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی ہے۔ یہ بخاری میں روایت ہے۔ اب ایسے ہی نہیں جیسے آپ کبھی الارم بھی لگا لیں اور اتنے تھکے ہوئے ہوں کہ پھر اس کے بعد آپ الارم بھی بج کے بند ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب بند ہوا اور کیا ہوا، کیا مجھے تو یہی نہیں پتا۔ یا کبھی اے ایم کی جگہ پی ایم کا لگا دیا، نیند میں پتہ ہی نہیں چلا، تو کبھی بھول چوک ہو ہی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں سب کی نماز قضا ہو گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ تو سورج نکل آیا، آپ نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ تو بلال اٹھتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس نے آپ کی روح قبض کر لی اس نے میری بھی کر لی، یعنی میں بھی سو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، اب اذان دو، اور سب کو اٹھایا پھر اور پھر نماز پڑھی۔ تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احتیاط کتنی تھی کہ یہ نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کی آنکھ لگ جائے اور سارے ہی سوئے پڑے رہ جائیں اور کسی کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ ہمیں اٹھا دیں۔ اب اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی، ہو سکتا ہے بعض لوگ الارم سے بھی نہیں اٹھتے، اتنی زیادہ ان کو گہری نیند آتی، تو کسی کو کہہ چھوڑیں کہ مجھے جگا دینا، اگر آپ مجھے اٹھا ہوا نہ دیکھو تو مجھے جگا دینا۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی نماز کے بارے میں بہت کانشیس رہے۔ اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ پہرے دار بھی تھے، تو آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ آپ نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں جا کے اکیلے ہو کے بیٹھ گئے تھے، حضرت عمر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہا تو باہر کون کھڑے ہوئے تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ جائیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت طلب کریں کہ میں حاضر ہو جاؤں ان کے پاس، کہ عمر آئے ہیں اور وہ حاضری کی اجازت چاہتا ہے، یعنی آپ اپوائنٹمنٹ لے دیں، آپ اندر جائیں۔ تو کون اندر جاتا تھا پھر؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا۔ تو واپس آیا تو فرمایا کہ وہ تو خاموش رہے، یعنی آپ کو اجازت نہیں اندر جانے کی۔ تو اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوتے تھے، کسی اور کو نہیں اجازت ہے کہ اندر جائیں، اس وقت ان کو اجازت ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا کلوز تعلق آپ کو پتہ چلتا ہے نا۔ اور مطلب آپ اس سے یہ دیکھیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی शख्सियत कैसी थी कि ऐसे लोगों को जो कि गिरे पड़े हों बिल्कुल माशरे में, जिनका कोई हैसियत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मकाम नहीं, उनको कितना रेज किया, कितना बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। तो तमाम ही गज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, लेकिन ख़ास तौर पे आप देखें कि गज़वा बदर बहुत अहम है इस मामले में, और इस लिहाज से कि गज़वा बदर में उमैया भी शरीक हुआ था। हालांकि उमैया उन लोगों में से था जो उसको ज़्यादा लड़ने वड़ने का ज़्यादा वो नहीं था, जंगजू किस्म का कोई ऐसा नहीं था कि बड़ा जंगजू सिपाही हो, बड़ा ऐसा वो वाला नहीं था उसका किरदार। उसका किरदार वो था कि पैसे दे के मैं किसी और को भेज दूँ लेकिन मैं खुद ना जाऊँ। अब जंगे बदर में जब अबू जहल ने उसको बड़ी आर दिलाई और बड़ा कुछ कहा तो वो फिर जाने पे राज़ी हो गया, और उस वक़्त जिस वक़्त के सब लोग भाग गए और कोई रह नहीं गया, अब उस टाइम पर उमैया जो था बड़ा भारी भरकम था, बिल्ड ज़्यादा थी उसकी, वो वहीं रह गया और सारे काफिर भाग गए। अब वो तो देखें अभी तो जंग यानी ऑलमोस्ट ख़त्म, तो ख़त्म समझे हुई है लेकिन अभी कोई ऐसा रैप अप नहीं हुआ। इतने में अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे वो ज़िरे इकट्ठी कर रहे थे जंग के मैदान से, और अब्दुर्रहमान बिन औफ और उमैया जो थे वो जाहिलियत में बिज़नेस पार्टनर हुआ करते थे, बड़े गहरे दोस्त भी थे और एक ही ऑलमोस्ट फैमिली थी। साद बिन मुआज़ के साथ भी उसकी दोस्ती थी उमैया की, और अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ भी थी। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम जैसे आपको बताया कि पहले तो अब्दुर्रहमान नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में रखा था ना, अब्द अमर कोई कहता है, कोई अब्दुल अब्द काबा के बाज़ जगह पर लिखा हुआ है कि ये नाम था उसका, उनका नाम था अब्दुर्रहमान बिन औफ का। तो उमैया चूँकि बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसने कहा मुझे तो रहमान का नहीं पता, तुमने नाम बदल लिया, अब मैं कोई और तीसरा नाम रख लेती, क्योंकि अब्द अमर तो अब तुम मुझे कहने नहीं दोगे तो कोई तीसरा नाम रख लेते, तो अब्दुल इलाह नाम रख दिया, इलाह का बंदा। चलो इलाह तुम्हारा कुछ है मेरा कुछ है, तुम जिसको भी मानते हो लेकिन इलाह तो एक है ना, तो अब्दुल इलाह तुम्हारा नाम रख देते हैं। तो अब मैदान जंग के अंदर जब उमैया पड़ा हुआ है तो उसने अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखा तो पुकारा अब्द आमर, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर कहने लगा अब्दुल इलाह, तो वो पलटे हैं, देखा तो उमैया पड़ा हुआ, उसने कहा ये जो तुम ज़िरे इकट्ठी कर रहे हो इससे कहीं ज़्यादा माल मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन बस तुम मुझे अपनी पनाह में ले लो, अपना कैदी बना लो। यानी उस वक़्त अभी देखें बदर है ना, तो अभी कोई भी माल गनीमत के बारे में पता नहीं है कि इसका क्या होगा, यानी क्या कैदियों का क्या होगा, क्या माल गनीमत का होगा, अभी तो सारे अहकाम आने थे। लेकिन हाँ ये ज़रूर होता था कि फ़िदिया दे के जिसको जो जिसको कैदी बना लेता था फिर फ़िदिया दे के उसके घर वाले उसको छुड़ा लेते थे। तो उसने कहा मेरा तो बहुत बड़ा फ़िदिया तुम्हें मिल सकता है तो मुझे कैदी बना लो जल्दी से, क्योंकि वो बचना चाहता था ना, कोई आके ख़त्म कर देगा। अब अब्दुर्रहमान ने बात मान ली और उसको ले कर चल पड़े, उन्होंने ज़ीरे वहीं फेंकी, उसको ले कर साथ चल पड़े। इतने में देखें अल्लाह ताला की जो कदर है ना कि वो गालिब आके रहती है। इतने में बिलाल रज़ीला तालानों ने उसको देख लिया, और जब बिलाल रज़ीला तालानों ने उसको देखा अल्लाहु अकबर, तो वो वहीं से चीखे कि रसुल कुफर, कुफर का सर, कुफर का सरदार, ए मुसलमानों ये कुफर का सरदार यहाँ है, ए मुसलमानों आओ ये देखो आज ये या तो ये बचेगा या मैं बचूंगा, यानी एक को तो ख़त्म होना होगा, ये नहीं बच सकता, यानी आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ जो हैं वो आगे आ गए और उन्होंने बिलाल से फरमाया कि नहीं मैंने इसको अपना कैदी बना लिया, मगर बिलाल रज़ी अल्लाह तआला कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। खुद सोचें एक इंसान के ऊपर क्या कुछ नहीं गुज़रा वो वक्त, जिस वक़्त के इनको एक बूंद पानी के लिए भी ऐसे तरसाया जाता था, इनके सीने के ऊपर पानी फेंका जाता था, गर्म तपती दोपहर के अंदर जब वो बिल बिला रहे होते थे पानी के लिए कि मुंह में नहीं डालेंगे, दैट वॉज अनदर काइंड ऑफ टॉर्चर, जो कि मेंटल टॉर्चर, कि तुम्हारे सीने पे डालेंगे तो देखो पानी है लेकिन तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा, तुम लात और उज्जा कहोगे फिर मिलेगा पानी। बेहोश हो जाते थे वो इस टॉर्चर से, बेहोश हो जाते थे, और लेकिन सुबह से बांधते थे और रात हो जाती थी, फिर अगले दिन फिर वही होता था। एक दिन दो दिन की बात नहीं थी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। आज तो किसी को टेढ़ी आंख से भी कोई देख लेना तो फौरन डर जाते हैं और कहते हैं हाय हमें कुछ कह ना दें। अभी किसी ने कुछ कहा नहीं होता, कुछ कह ना दें, उसकी वजह से हम तो सारी चीज़ें जिससे हम कहीं मुसलमान नज़र आ सकते हैं या किसी को ज़रा सा भी ये गुमान हो सकता है ये मुसलमान है, वो सब चीज़ें हमसे दूर कर दो क्योंकि हम नहीं पहचाने जाने चाहते कि हम मुसलमान हैं। मगर वो प्राउड मुस्लिम थे, ऐसे भी वक्त में जिस वक्त मुसलमान होना एक गाली था, ऐसे वक्त में भी वो सीना ठोंक के खुद को कहते थे कि हम मुसलमान हैं। आज कुछ नहीं कहा जाता फिर भी डर डर के रहते हैं कि हाय पता ना चल जाए, हाय कुछ हो ना जाए हमें। इतना ज़्यादा अपना आप प्यारा है, अपनी जान, अपना माल, अपनी हर चीज़ इतनी प्यारी है, अपनी इज्जत इतनी प्यारी है। उन्होंने तो सब कुछ ही दे दिया, ना इज्जत की परवाह की, ना जान की परवाह की, ना कोई किसी किस्म की और चीज़ की परवाह की। वही बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमैया के सार आंखों पे होते अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, वही उसके पास कितना मकाम पा सकते थे। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको ज़्यादा नहीं माशरे में स्टेटस होता, उनके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती ना कि वो तो शाह से ज़्यादा को चौहान वफ़ादार बनते हैं, जैसे हमारे मुसलमान आजकल हैं कि वो जितना काफिर कहते हैं उससे भी बढ़ के आगे कहते हैं ताकि ये बताएं कि हम कितना तुम्हारे साथ हैं, देखो देखो हम भी तुम्हारी ज़ुबान बोल रहे हैं। तो वो ऐसा कुछ कर सकते थे कि वो उमैया से भी ज़्यादा आगे बढ़ के दुश्मनी करते और मुखालफत करते और उमैया के साथ खड़े हो जाते इस चीज़ में, तो कितना उनको ज़ाहिर है कुछ मिल ही जाता। लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया, उन्होंने ज़िल्लत रुसवाई चूज़ कर ली, उन्होंने गलियों में घिसटना चूज़ कर लिया, लेकिन अहद उन अहद को नहीं छोड़ा। ऐसे ही तो नहीं मुअज़्ज़िन बनाए गए ना, वो कलमा जिसके लिए वो घसीटे गए और जलील किए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को अपॉइंट किया कि आप ये आवाज़ बुलंद करेंगे। तो फिर देखें कि उन्होंने कहा कि मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, आज यहाँ ये बचेगा या मैं बचूंगा। अब सारे मुसलमान भी इकट्ठे हो गए, तलवारें लेकर आ गए, अब अब्दुर्रहमान बिन औफ उसको बचाने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने वहीं उमैया को ख़त्म कर दिया। और आपको पता है जब उमैया को दफन किया जाता था, उसको गड़ा खोद के उसके अंदर डाला जा रहा था, तो ज़मीन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उगल के बाहर फेंक देती थी, हत्ता कि उसके ऊपर वैसे ही पत्थर रख दिए गए थे। आप ऐसे वाक्यात सुनते हैं आज भी, बाज़ लोगों के ऐसे पता चलते हैं कि उनके लिए कब्र खोदी गई, दफनाया गया और अगले दिन आके देखा तो कब्र से बाहर पड़े हुए, क्या होता है ये। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा कुछ होता है कि ज़मीन भी नहीं उनको बर्दाश्त करती। अल्लाहु अकबर, इनका मकाम और मर्तबा इससे अंदाज़ा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, बुखारी और मुस्लिम में ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सुबह को नींद से जाके तो फरमाया है बिलाल आप क्या अमल करते हैं कि मैंने आपके कदमों की चाप अपने आगे आगे सुनी है जन्नत में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो फरमाया या रसूलल्लाह मैं तो कोई ऐसा तो अमल नहीं जिसका कि मुझे इतना हो कि इसका अजर मुझे को बहुत होगा, लेकिन बस एक बात है कि मैं सुबह शाम जिस वक्त भी यानी वज़ू ख़त्म होता है तो मैं वज़ू करता हूँ और दो रकत पढ़ लेता हूँ, जिसको हम तहियतुल वज़ू कह देते हैं, यानी जब भी वज़ू करता हूँ ना दो रकत पढ़ लेता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और उसके बाद जो जैसे जैसे सारे गज़वात होते गए, ये साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहे, हत्ता के फिर जब मक्का फतह हो गया, जब मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, जिस वक्त आप बुत गिराते जा रहे थे और तवाफ़ किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर जाके جب نوافل ادا کیے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور اسی طرح جب نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، آپ کعبہ کے اوپر چڑھیں اور اذان دیں۔ اے اللہ اکبر، یہ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اتنا اسی مکہ میں اتنا ذلت آمیز سلوک برداشت کیا، وہی کعبہ کے اوپر چڑھ کے اب اذان دیں گے؟ کتنے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اور قریش کھڑے میں، وہ جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ کھڑے میں، اور وہ دانتوں میں انگلیاں دبائے میں کہ یہ کیا ہونے کیا لگا ہے، ان کی تو یعنی ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ ایک کالا غلام اور اس کے بعد اس کو بھی ایسی اجازت اور ایسی بڑا آنر مل جائے۔ اور حتیٰ کہ ایک ان میں سے کہنے لگا، ظاہر ہے سارے تو نہیں ابھی مسلمان ہوئے تھے نا جب مکہ فتح ہوا ہے، تو ایک ان میں سے کہنے لگا کہ یہ بھی دن ہمیں دیکھنا تھا کہ یہ کوا اٹھ کے اذان دینے لگے، کعبہ کے اوپر چڑھ کے یہ اذان دے رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا میں تو کچھ نہیں بولتا، اس لیے کہ میں تو کچھ بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی جا کے ان کو اطلاع دے دیں گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کچھ کہا ہے۔ اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، نہیں، بہت ہی بری بری ڈی گریڈنگ باتیں۔ ایک نے کہا یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ ایک حبشی کعبے پہ چڑھا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا شکر ہے کہ میرا باپ مر چکا ہے اور یہ دن دیکھنے سے پہلے وہ مر گیا، ورنہ وہ تو آج مر جاتا کہ یہ دن دیکھنا تھا۔ ان لوگوں کے اندر نا تعصب بہت تھا، ان کے اندر یہ جو سٹیٹس کی جو بات ہے نا، یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر ہی کتنا ہے، ہم لوگ حالانکہ ابھی بڑے سویلائزڈ ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے ہم پڑھے لکھے اور بڑے ہم ایسے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہمارے حالات کیا ہیں کہ ہم اپنے نوکر کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے نوکر کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا نوکر ہمارے جیسا لباس پہن لے۔ جب ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہی تھی، سبحان اللہ، کہ وہ جب بازار گئے تو اچھی کوالٹی کا ایک لباس دیکھا تو اپنے خادم کو دے دیا کہ تم پہنو، تم تو جوان ہو، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے کیا پہن کے کرنا ہے، تم اپنے غلام کو دے دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ ان کی سوچ کیسی تھی۔ ہم تو اپنے جیسا بھی نہیں پہننا برداشت کر سکتے کہ یہ اس نے نوکر کتنے تو کیا پہننا ہے، ہم تو اپنے دوست احباب کو بھی نہیں پسند کرتے، میرے جیسا پہن لے گا، میرے سے نہیں برداشت ہوتا، میں اور یہ ایک جیسا پہنے، ہمیشہ ان کو اپنے سے نیچا دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے ہم کیا ورڈز استعمال کرتے ہیں، بھوکے ننگے لوگ، یہ کمی لوگ، یہ نیچی ذات کے لوگ، اس طرح کی باتیں ان کے لیے کہتے ہیں۔ ابھی ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، خوشی غمی میں کبھی ہم ان کے ڈور سٹیپ میں انٹر نہیں ہوتے کہ کبھی آج تک ہم ان کے گھر میں چلے جائیں، ان کی کوئی شادی ہو یا کوئی غم ہوئی ہو تو ہم چلے جائیں، جی افسوس کرنے میرے نوکر کے والد فوت ہو گئے یا میرے نوکر کا کچھ، کبھی۔ حالانکہ یہ نوکر ہیں، یہ غلام نہیں ہیں، غلام کا تو سٹیٹس نوکر سے بھی کم ہوتا تھا، یہ تو آپ کی پے پہ چلتے ہیں، تب بھی یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، ہم خود تو اے سی میں بیٹھ جائیں تو اپنے نوکر کو اے سی کے کمرے کے اندر نہیں بٹھاتے، تم باہر گرمی میں بیٹھو۔ تو وہ سوسائٹی تو دس ہاتھ آگے تھی سٹیٹس کانشیسنیس میں، وہ اتنا زیادہ اس چیز کو دیکھتے تھے، ان کی تو سارا سسٹم ہی اس کے اوپر تھا، اونچے نیچے سٹیٹسز سوسائٹی کے اندر، اس کا کیا سٹیٹس ہے اور اس کا کیا، اور فخر بھی انہی چیزوں پہ ہوتا تھا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ تو اب ان سے کیسے برداشت ہونا تھا کہ یہ ایک غلام، چاہے وہ آزاد کردہ غلام کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک سٹگما ہے نا، ایک لگ گیا نا کہ یہ کبھی غلام تو تھا نا، چاہے آزادی، جیسے کہ جیسے آپ کو میں اس سے شاید آپ کو زیادہ سمجھ آئے، جیسے امیگرنٹ ہوتا ہے، اب وہ کسی ملک میں آ کے اس کا پاسپورٹ لے بھی لے نا تو وہ امیگرنٹ ہی رہتا ہے، جو وہاں کے نیٹوز ہوتے ہیں، جو گورا ہوگا اس کا کنٹری اگر ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھتا ہے حقدار کہ میں ہوں اس ملک کا اوریجنلی، یہ کیا ہے، یہ تو امیگرینٹس ہیں، چاہے کتنے دیر سے آپ نے پاسپورٹ لیا ہو۔ اسی طرح چاہے آزاد کرتا غلام، حضرت زید کے ساتھ کیا ہوا تھا، چاہے وہ آزاد بھی ہو گئے تھے، پھر بھی ان کو وہ ذہنوں کے اندر تو ایک ہوتی ہے نا چیز، حضرت زینب ان کو نہیں ایکسیپٹ کر سکی تھی، क्योंकि जाहिर है कि कभी तो गुलाम रहे ना। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ऐसा जहनों के अंदर हो, वहाँ पर हज़रत बिलाल आउट ऑफ एवरीबडी एल्स, इतने इतने बड़े लोग खड़े हुए हैं। अब मुसलमानों के अंदर भी बहुत बड़े बड़े स्टेटस वाले, बड़े 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 कबाइल के लोग, नामी ग्रामी लोग सब हैं। अब वक्र सिद्दीक रज़ी अल्लाह हज़रत उमर हज़रत अली है, कितने लोग हैं, लेकिन उन सारों को छोड़ के हज़रत बिलाल काबा पे खड़े होकर अजान दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। तो उस वक़्त उनका अजान देना इनके ऊपर बड़ा गरां गुजरा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आर नहीं समझी कि आज के देखो कितनी ये बातें बनाएंगे। समझ लें वो दिन हज़रत बिलाल का दिन था, जैसे ओहद हज़रत अल्हा का दिन था ना, बस फतह मक्का हज़रत बिलाल का दिन था। कितना बड़ा ऑनर मिला उनको। और इसी पे सूरह हुजरात में आयत भी थी, या अन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर इन्ना उनसा वाली, अरे लोगो तुम्हें तो अल्लाह ताला ने एक मर्द एक औरत से बनाया, तुम्हारे तो कबाइल और ये ख़ानदान ये इसलिए बनाए सिर्फ तारुफ के लिए, तुम्हारे अंदर तो जो तकवा वाला है वो अल्लाह के नज़दीक है जो सबसे ज़्यादा इज्जत वाला है। लेकिन हमने भी आज देखो क्या मयार बना लिए, और हमारे दिमागों से ये जाता नहीं है कौन किस ख़ानदान का है, उसके मुताबिक हम उससे बात करते हैं और उसे डील करते हैं। अल्लाह अकबर। तो इतनी बड़ी ये एक बात थी। और उसके बाद फिर फतह मक्का के बाद जब और लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, जब अबू सुफियान ने भी कर लिया, तो अबू सुफियान गुज़र रहे थे तो एक जगह पे हज़रत सुहेब सुहेब रूमी आपको पता है वो, और अबू सुफ बिलाल और अम्मार खड़े थे। तो इनके पास से जब अबू सुफियान गुज़रे तो इनमें से किसी एक ने कहा, हो सकता है यह तो रिवायत में लिखा हुआ है कि इनमें से किसी एक ने यह कहा कि अल्लाह की तलवारों ने अभी इंसाफ नहीं किया अल्लाह के दुश्मनों की गर्दनों पर, यानी अल्लाह के दुश्मनों की गर्दें तो कट जानी चाहिए थी लेकिन अभी इंसाफ नहीं हुआ, अल्लाह की तलवारों ने अभी इंसाफ नहीं किया कि इनको तो ख़त्म कर देना चाहिए था, यानी कैसे ये ज़िंदा रह गए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जब सुना तो उन्होंने डांट लगाई कि क्या ये कह रहे हो तुम, ये इतने बड़े सैयद और सरदार और शेख के बारे में जो सरदार हैं कुरैश के, इनके बारे में तुम ये कह रहे हो। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने तो इसलिए कह रहे थे ना क्योंकि आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतनी अबू सुफियान को ऑनर दिया था कि इनके घर में भी कोई पनाह ले लेगा तो वो भी अमान में है, और जाहिर है एक सरदार तो थे तो वो तो उनके साथ एक अच्छे टर्म्स में आना चाहते थे। तो जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने डांट लगा दी तो अल्लाह अकबर, अब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला उन्हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए और शिकायत लगाई कि अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा ऐसा कहा है। अब बताएं, आप बताइए आगे से आपसे सलम ने क्या किया होगा। एक तरफ आपके साथी अबू बकर सिद्दीक हैं, उनका मकाम और मर्तबा तो आपको पता है, दूसरी तरफ कौन लोग हैं, ये बिलाल सुहेब ये सारे गुलाम ही थे ना पहले, अम्मार ये सब तो गुलाम थे, तो चाहे आप तो आज़ाद हैं लेकिन एक वक्त तो था ना उनका वो तो स्टेटस नहीं है, और कहाँ अबू बकर सिद्दीक हैं आप सल्लम के यार गार, और फिर कितना उनका बुलंद मुकाम है आपको सबको पता है, तो फिर क्या हुआ होगा आप सोचें, आप बताइए। जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और फरमाया, ऐ अबू बकर लगता है आपने इन लोगों को नाराज़ कर दिया, याद रखो अगर तुमने इनको नाराज़ कर दिया तो अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक जो थे वो दौड़े हुए गए इन लोगों के पास और जाके फरमाया, मेरे भाइयों शायद मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया तो तुम लोग मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहने लगे कि हमने अल्लाह ताला आपको माफ़ करे, मतलब कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह अकबर। कोई छोटा मकाम नहीं है इनका। इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो इनकी तारीफ कुरान पाक में फरमाई है, क्योंकि शुरू में एक वक्त जब शुरू शुरू की बात है कि एक वफ्त आया था और अबू तालिब से मुलाकात की और उनसे कहा, मक्की ज़िंदगी की बात है, और उनसे कहा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद की हम बात सुनने को तैयार हैं, मगर हम सुनेंगे भी, हम उस पर गौर व फिक्र भी करेंगे, मगर हमारी एक शर्त है, अगर वो शर्त मान लें तो हम भी इनके साथ बैठने को तैयार हैं। और वो शर्त क्या है कि ये हमें किसी सूरत गवारा नहीं है कि हमें जो हम अशराफ़े कुरैश हैं हमें हमारे ग़ुलामों के साथ एक मजलिस में बिठा दिया जाए, ये नहीं हम बर्दाश्त कर सकते कि अम्मार और ये यासिर और यासिर तो नहीं थे उस वक्त, तो बिलाल और सुहेब और अम्मार और ये मतलब ये इन ग़ुलामों के साथ हमें बिठाया जाए, अगर इनको पीछे करेंगे तो फिर हम बैठने को तैयार हैं, हम सुनने को भी तैयार हैं। और हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शर्त भी बर्दाश्त कर लेते और मान लेते। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक इम्तिहान नहीं आया, हर तरह के इम्तिहान आया, अब ये भी कैसा कड़ा इम्तिहान था कि कहाँ ये इतने लॉयल लोग, और मक्की ज़िंदगी की बात है, और कहाँ ये कि भाई अगर इतने बड़े सरदार अगर ईमान ले आते हैं, वो बड़े बड़े सरदार थे ना, अगर वो ईमान ले आते हैं तो फिर तो बहुत ईजी हो जाता है मुसलमानों के लिए, तो आप सर मान जाते हैं। और अब आपके साथियों ने भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ठीक है ये तो हमारे अपने साथी ही हैं ना, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अम्मार और ये तुम्हारे अपने साथी हैं, ये तो मान ही जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। तो इनको मतलब इनको तो समझ आ जाएगी ना, अगर थोड़ी देर के लिए पीछे हो भी जाए कोई ऐसा मसला नहीं, तो आप सल्लम मान जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान उतार दिया और सूरह कहफ में फरमा दिया वसबिर नफ्सा कमालदीना यदऊना रब्बहुम बिलगताती युरीदूना वजहा, ए नबी आप अपने आप को इनके साथ रोके रखें जो अपने रब को याद करती हैं सुबह और शाम, अल्लाहु अकबर, आपकी निगाहें इनसे आगे ना जाए, इनसे ना फिरें आगे, अल्लाहु अकबर, इनकी मदा में अल्लाह ताला ने इनकी गवाही दे, वो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये आयतें उतरी थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मजलिस में बैठे थे वहां से उठे और जाके बिलाल और सुहेब और इनके साथ बैठ गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई आपकी शान नहीं नीची हुई इस वजह से। आज हम सोचते हैं कि हम अपने नौकर के साथ अगर बैठ गए, हम हमारे साथ सोफे पे एक साथ बैठ गया ना, तो वैसे हम उनको कहते हैं वो हमारे खाने भी पकाएं अपने हाथ से, आटे भी गूंदें और हमारे सब काम करें, लेकिन हमारे साथ एक कुर्सी पे या एक हमारे बिस्तर पे बैठ जाएं वो, ये हमें गवारा नहीं, अल्लाह अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को वो नहीं बनाया कि कैसे ये मेरे साथ बैठेंगे, क्यों ये मेरे साथ बैठेंगे, क्यों ये इनका और मैं कहाँ, मैं और कहाँ ये, और इनको थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हूँ, ऐसा नहीं किया, अल्लाह अकबर। अब देखे ना ये तो वही वाली बात है कि जब आपका जहन ऐसा हो ना कि जिसके अंदर ये जहन के अंदर हो के इनका स्टेटस क्या और मेरा क्या, और अपने चाहे हम बोलते जितना मर्जी रहें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, लेकिन जब हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ होती है तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा ये मैं आपको ये भी लिख लें आपके, इनको अबू बकर सिद्दीक ने सात ओकिया के सात ओकिया के कीमत दे के इनको आज़ाद कराया था, जो कि 280 दिरहम बनती है, चांदी का सिक्का होता है, सोने के सिक्के में नहीं मुझे पता, लेकिन 280 चांदी के सिक्के होते हैं, इसके बराबर इनको दे के आज़ाद कराया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रहते थे, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी में रहे ऐसे ऐसे वक्त में भी, जिस वक्त कोई किसी और को जाने की इजाज़त नहीं थी, उस वक़्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई होगी तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि फिर इनके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई होगी। क्योंकि जब 5 दफ़ा तो दिन में वैसे ही जाते थे, वैसे भी पहरा देते थे बाहर, वैसे भी उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना ज़्यादा गहरा ताल्लुक था कि आपके सामान उठाए उठाए जा रहे हैं, आपके साथ साथ रह रहे हैं, तो उनके लिए तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का मतलब क्या था कि ज़िंदगी अब कोई माने नहीं रखती, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी उनके गिर्द घूमती थी ना, आप सल्लम के गिर्द घूमती थी, इनका दिन और रात आपके साथ होता था, तो आप नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मर्ग पे थे तो फरमाते हैं, हाय मेरे गम का क्या आलम, काश मैं इस दिन से पहले मर चुका होता। इसलिए कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि मैं कैसे अब जिंदा रहूंगा, मैं क्या करूंगा। और फिर जाहिर है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, तशरीफ़ ले गए, तो उस वक्त फजर के बाद का वक्त था जब आप दुनिया से रुखसत हुए, फजर की अज़ान नमाज हो चुकी थी। उसके बाद जब जोहर का वक्त आया तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एज़ यूजुअल, जैसे उनका तरीक़ा था, उठे अज़ान देने के लिए। और जब ये अल्फाज फरमाए अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो क्या किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया करते थे। तो आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है अब दुनिया में, तो ये बात सोच के कि अब आप तो है ही नहीं, तो इतना रोए कि हिचकी बन गई और अजान भी मुकम्मल नहीं कर सके, लोग भी रोने लगे और ये भी रो रहे हैं, और कोशिश के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे अजान दे दें मुकम्मल कर दें, लेकिन नहीं दे सके। और नीचे उतर आए और फरमाया कि मैं आपके बाद कभी नहीं अजान दूंगा। फिर उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर बांधा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ मदीना से, क्योंकि हम मदीना में हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें थी, यहाँ पे बैठते थे, यहाँ पे उठते थे, यहाँ पे जाते थे, और जिसने साथ साथ सारा वक्त गुजारा हो उसके लिए कितना मुश्किल होगा उन सारी यादों को पीछे करना। उन्होंने फरमाया कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ और मैं जिहाद पे जाऊँगा, लड़ूंगा अल्लाह के रास्ते में। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको पता है खलीफा बन गए थे, तो उन्होंने इनको रोका कि आप ना जाएं। तो फरमाया कि अगर तो आपने मुझे इसलिए आज़ाद किया था कि मुझे दोबारा ग़ुलाम बना लेंगे तो मैं रह जाता हूँ, लेकिन अगर आपने अल्लाह की खातिर मुझे आज़ाद किया था तो मुझे जाने दे, मुझे जिहाद पे जाने दे। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन अमल मोमिन के लिए जो है वो है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो ज़ाहिर अल्लाह की खातिर आज़ाद किया था, तो फरमाया कि मैंने तो आपको अल्लाह की खातिर आज़ाद किया। तो मदीना से चले गए शाम, वहाँ रहे, और फिर उसके बाद सहाबा के साथ कब मुलाकात हुई, जब हज़रत उमर का दौर आया और हज़रत उमर बैतुल मक़दस की चाबियां लेने के लिए गए, तो उस वक़्त उन्होंने फिर इनसे जब मुलाकात की तो इनसे दरख्वास्त की कि आप अजान दें वैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देते थे। तो इन्होंने कह दिया था कि मैं अजान नहीं दिया करूँगा। तो जब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत इसरार किया और ये अजान देने के लिए खड़े हुए, तो वो हाल था कि सहाबा फूट फूट के रो रहे थे, और हज़रत उमर का तो ये हाल था कि हिचकियाँ बन गई थी, दाढ़ी मुबारक जो थी वो आंसुओं से भीग गई। सहाबा को वो वक्त याद आ गया, अल्लाह अकबर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान दिया करते थे, सब यादें वापस आ गई। तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं खुशकिस्मत सहाबी जिन्होंने पहली अजान मदीना में दी, पहली अजान हरम मक्का में दी और पहली अजान मस्जिद अक्सा में दी, अल-कुदस बैतुल मक़दस में पहली अजान। कितना बड़ा एज़ाज़ है, कितना बड़ा एज़ाज़। और फिर जिस वक़्त के शाम में ही रहते थे तो एक दफ़ा इनको ख्वाब आया और ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि बिलाल कब तक आप, अभी वो वक्त नहीं आया कि आप हमारी ज़ियारत करें। तो ख्वाब देखा है तो अगले दिन ही मदीना का रास्ता लिया और राजा रसूल पे हाज़िरी दी और फिर ऐसे ताकि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इनसे मिलने के लिए आया, उनको चिमटा के प्यार किया। उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि आज सुबह के वक्त अजान आप दें, हालांकि इनका इरादा था कि कभी भी अजान नहीं देंगे आप। तो तब उनकी फरमाइश पे, उनकी बात नहीं टाल सकते थे ना, सुबह के वक्त मस्जिद छत पे खड़े होके अजान दी तो सारा मदीना जो था मुस्तरब हो गया, तड़प गया, अल्लाहु अकबर, लोग इतने बेकरार हो गए और रोने लगे, हर कोई रो रहा था। इसलिए कि वो वक्त याद आ गया कि कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में बिलाल अजान दिया करते थे, यानी इनकी आवाज़ के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की यादें जो थी वो अटैच हो गई थी। वो सारा नक्शा लोगों की आंखों में घूम गया, मदीना में तो एक कोहराम मच गया, ऐसे लगता था कि आज ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है। और मैंने देखा है वैसे, पता नहीं अल्लाह ताला ने जो उस शहर के रहने वाले हैं ना उनको एक ख़ास ही मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दी है कि जब मैं वहाँ के लोकल्स के साथ जितनी दफ़ा भी मिली हूँ मैं हैरान होती हूँ कि वो तो वहाँ रहती हैं और जब उनके साथ बात करो ना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात होती है तो जब आपकी वफ़ात की बात होती है तो इतने, यानी बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े शुयूख की बात भी कर रहे हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, तो वो ऐसे रोने लगते हैं, उनसे बात नहीं की जाती। मैं सोची ये तो यहीं रहते हैं और पता नहीं कितनी दफ़ा ये इस बात को दोहरा चुके होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आज ही आप सल्लम की वफ़ात हुई है, उनकी मोहब्बत का ये आलम है। तो फिर ये वापस चले गए, उसके बाद जब मदीना से गए तो ये बस इनकी आखिरी अजान यही थी, वापस चले गए। और दमिश्क में शाम में ही ना इनके इंतकाल हुआ और इनके इंतकाल के बारे में भी आता है कि जब इन्होंने ख्वाब में देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इन्होंने फिर उठे हैं और अपनी बीवी को बताया कि मैं अब यानी जाने वाला हूँ, तो वो बीवी रोने लगी और कहने लगी वाह हुज़्न, वाह मुसीबत, हाय मुसीबत, हाय गम। तो फरमाने लगे नहीं, ये तो खुशी की बात है, उससे बेहतरीन दिन कौन सा होगा जिस दिन मेरी मुलाकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के साथ हो। तो फिर इनकी वफ़ात हुई है, कोई बाज़ रिवायात में 18 हिजरी है, बाज़ में 20 हिजरी लिखा हुआ है कि ये दुनिया से चले गए। इनकी उम्र उस वक़्त 60 बरस के करीब थी और वहीं पे ये दफन हुए। और आज भी वहाँ पे जाएं तो कोई एक जगह पे वो कहते हैं कि ये हज़रत बिलाल की कब्र है, वल्लाहु आलम। इनके बारे में आता है कि इनकी कोई औलाद नहीं थी, इन्होंने शादियाँ की लेकिन किसी से भी इनकी औलाद नहीं हुई। एक जगह पे तो ये भी है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बेटी से तो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह कराया था, बनू ज़ुहरा में भी और हज़रत अबू दरदा के ख़ानदान में भी इन्होंने शादी की थी। مگر اولاد کسی سے بھی نہیں ہوئی. تو یہ تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے کچھ احادیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہوئی ہیں. بہت زیادہ گو تو احادیث نہیں ہیں, لیکن کچھ احادیث جیسے جس میں سے ایک جو آپ پڑھتے بھی ہیں کہ جو پگڑی ہے اور جو جرابیں اس پہ مسا کرنے والی روایت جو ہے وہ انہوں نے روایت کی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر کس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی, کیونکہ اندر جب آپ جاتے ہیں تو کس طرف کس ڈائریکشن میں نماز پڑھنی ہے یہ نہیں سمجھ آئے گا نا. تو یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت, تو اس لیے انہوں نے وہ روایت کی ہے کہ کہاں آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی. تو یہ ان سے کچھ روایت ہے. اسی طرح یہ ہمیں پتہ چلتا ہے ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا تھا صحابہ کے درمیان, کہ سیدنا عمر تو جب خلیفہ بنے ہیں تو ان کے دروازے پہ بہت سے قریشی سردار آئے ملنے کے لیے, جیسے سہیل بن عمر اور ابو سفیان اور بھی کچھ. تو عین اسی وقت بلال اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کچھ آزاد کرتا جو غلام ہوا کرتے تھے وہ بھی آئے, لیکن انہوں نے آپ کو پتہ ہے شروع کا اسلام قبول کیا ہوا, بالکل شروع میں یہ اسلام قبول کرنے والے میں سے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان کو آنے کی اندر اجازت دی. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ قریشی سردار بھی آئے ہیں اور یہ بھی آ گئے, تو پہلے ان کو اندر بلا لیا. تو قریشی سردار جو تھے وہ باہر بیٹھے رہے اور ان کو بڑا برا لگا, بڑے ناراض ہوئے, اور ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا آج کے دن جیسا رسوا کن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا. عمر غلاموں کو ملاقات کا شرف دے رہا ہے اور ہمیں دروازے پہ کھڑا رکھا ہوا. سہیل نے کہا لوگوں اللہ کی قسم میں تمہارے چہروں پر ناراضگی کے آثار دیکھ رہا ہوں, اگر تم عمر کے اس عمل پہ ناراض ہو رہے ہو نا تو اپنے ماضی پہ شرمندہ ہونا چاہیے تمہیں. ان غلاموں کو اور تمہیں دونوں کو اسلام لانے کی دعوت ایک ساتھ دی گئی, لیکن انہوں نے فوراً بلا تاخیر اسلام قبول کر لیا, لیکن تم لوگوں نے دیر لگا دی. اب تم اس وقت کی فکر کرو جب قیامت کے دن ان لوگوں کو تم سے پہلے آواز دی جائے گی. اللہ اکبر, کتنا بڑا مقام ہے. سوچو ابھی تم یہاں پہ ناراض ہو رہے ہو نا, قیامت کے دن جب ان کو تم سے پہلے جنت کے لیے آواز دی جائے گی تب کیا کرو گے. تو ہمیں بہت بڑا میسج ملتا ہے ان کی زندگی سے کہ ہمارے دین کے اندر اس طرح کی چیزیں کہ کون مالی طور پہ اوپر ہے یا نیچے ہے اور اس کا درجہ یہ ہے, یہ ہندوؤں کے اندر ضرور ہے کہ ان کے اندر کاسٹ سسٹم ایسا ہے کہ کچھ لوگ اونچے سمجھے جاتے ہیں اور کچھ نیچے اور گندے کیڑوں سے بھی زیادہ ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے, لیکن ہمارے دین میں ایسا کچھ نہیں ہے. اور اس سے اگر ہم یہ سبق نہ لیں تو اور کیا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبھی بھی آپ اس مقام پہ نہ دیکھتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز اہمیت رکھتی ہے اس کو بڑا بنائیں, نہ کہ ان چیزوں کو جن کو ہم نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سوچ بدلنے کی ہمیں توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہمیں بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.